युद्ध में सबकी मृत्यु हो गई, यहां तक कि रावण को जल देने वाला भी कोई नहीं बचा, अंत्येष्टि संस्कार करने वाला कोई नहीं बचा, केवल विभीषण ही बचे। इतना बड़ा विनाश किया भगवान ने। यह कथा बहुत प्रसिद्ध है। तो श्री भगवान ने स्त्री जाति का बहुत बड़ा सम्मान किया, स्त्री की सुरक्षा के लिए उन्होंने सबसे बड़े राक्षस रावण का वध किया, और रावण के वध के साथ ही कोटि कोटि राक्षसों का वध कर दिया। हमारे यहाँ लोग कहते हैं कि रावण के बहुत पुत्र थे और बहुत नाती थे, 1 लाख बेटा 1.25 लाख नाती, उकरा घर में दिया न बाती, ऐसा भगवान ने किया कि राक्षसों का नाम निशान मिटा दिया। भगवान के अवतार का यह प्रसिद्ध कारण है। जदा जदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्म से तदात्मानम सजाम। जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म बहुत बढ़ जाता है, तब भगवान आते हैं। तो उस समय अधर्म बहुत बढ़ गया था। अधर्म में 4 मुख्य अधर्म हैं: परस्त्री गमन, जुआ खेलना, शराब पीना और मांस खाना। तो राक्षसों का काम ही था मांस खाना। जिस देश में भी वे गाय और ब्राह्मण को पाते थे, सीधे खा जाते थे। केवल एक व्यक्ति का डर था रावण को, वो था अगस्त जी का डर। दक्षिण भारत में रहते थे और रावण लंका में रहता था, तो रावण उनसे ही डरता था। तो श्री भगवान भी दक्षिण भारत में गए, अयोध्या से चल करके पहले प्रयागराज आए, प्रयागराज के बाद वे चित्रकूट आए, चित्रकूट से फिर चलते चलते आपके बॉम्बे शहर के पास भी आए। यहाँ नासिक में भगवान रहे कुछ दिन, वहीं पर रावण की बहन शुभलंखा का नासिका छेदन किए, इसी कारण से इस स्थान को नासिक कहते हैं, जहां शुभलंखा का नाक कान कटा गया। शुभलंखा बहुत व्यभिचारिणी स्त्री थी, अनेक ऋषि मुनियों को भ्रष्ट किया था, वो बहुत मायावेनी थी, बहुत सुंदर रूप बना करके जाती थी ऋषियों के आश्रम में, और वहां बड़े बड़े ब्रह्मचारियों को नष्ट करती थी। एक बार वह पंचवटी में गई, पंचवटी जहां श्री भगवान रह रहे थे, तो उसने राम लक्ष्मण को देखा, उनकी सुंदरता को देख करके वह विकल हो गई। देख ही विकल भय जुगल कुमारा, दोनों कुमार को राम और लक्ष्मण को देख करके वो विकल हो गई और तुरंत उसने बातचीत करना चालू किया। निर्लज्ज थी, कोई मर्यादा का अंकुश नहीं था। राम के पास पहुंच करके वो कहती है, देखो आज तक मैं कुमारी हूं, विवाह नहीं किया। भगवान ने पूछ दिया क्यों नहीं विवाह किया, तो वो झूठ बोलती है, इसीलिए नहीं किया कि हमारे लायक कोई दुल्हा मिला नहीं। अब तुमसे मैं विवाह नहीं करूंगी तो अब नहीं कर पाऊंगी, इसीलिए मेरे प्रस्ताव को स्वीकार करो, मुझसे विवाह करो। मन माना कुछ तुम ही निहारी, तुमको देख करके अब मैंने सोचा कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग, तुमसे विवाह कर लेना चाहिए। तुम भी मेरे लायक पूरा नहीं हो, लेकिन क्या करूं, मन मार करके मैं विवाह करना चाहती हूं। तो भगवान ने सहज भाव से कहा, सीता जी के तरफ दिखा करके, ये हमारी श्रीमती जी हमारे साथ आई हैं, हमको विवाह नहीं करना है। अगर तुम विवाह करना ही चाहती हो तो मेरे छोटे भाई से बात करो। लक्ष्मण जी थोड़ी दूर पर थे, उनसे तुम प्रस्ताव डालो। उनकी स्त्री नहीं है, या भीतर से कहने का भाव यह था भगवान का कि वो तो अयोध्या में है, यहां वे बिना स्त्री के हैं, तुम उनसे बात करो। तो निर्लज्ज सूर्पणखा तुरंत लक्ष्मण जी के पास पहुंची, कहने लगे तुम्हारे भैया तो बाध्य हैं अपनी पत्नी से, तुम विवाह करो मेरे साथ। लक्ष्मण जी ने कहा कि अरे मैं तो दास हूं उनका, मेरे साथ अगर विवाह होगा तो तुम दासी हो जाओगी, और उनके साथ विवाह होगा तो तुम अयोध्या की रानी बनोगी। तो क्षण भर में अपना भाग्य क्यों बिगाड़ती हो, प्रयास करो, ट्राई करो। तो फिर राम के पास चली गई, उसको लगा कि लक्ष्मण ठीक ही कह रहा है, अगर इसके साथ विवाह करूंगी लक्ष्मण के साथ तो मैं दासी हो जाऊंगी, और बड़े भाई के साथ विवाह करूंगी तो मैं रानी बनूंगी। लेकिन यह लड़का राम नाम का बड़ा सुशील है, परंतु बेचारा ठीक ही कह रहा है कि मैं विवाहित हूं, मेरी पत्नी है, मैं दो स्त्री का खर्चा नहीं चला सकता। एक काम करो, यदि मैं सीता को खा जाऊंगी तब यह मेरे साथ विवाह करेगा। जो सीता को मारने के लिए दौड़ी खाने के लिए, ये वाल्मीकि रामायण में कथा है, तो खाने के लिए दौड़ी तो श्री भगवान समझ गए कि सीता को मारना चाहती है, तब उन्होंने लक्ष्मण जी को संकेत करके कह दिया, नाक और कान पर इशारा करके तलवार से इसकी नाक कान साफ कर दो। भगवान का इशारा पाकर लक्ष्मण जी ने तुरंत उसको दंड दिया, उसके नाक को काट दिया। बहुत खून बहने लगा, विकराल रूप हो गया। इसलिए भगवान ने नासिका कटवाया कि वो किसी पुरुष को धोखा नहीं दे पाएगी। नासिका जिसकी कटी है उस स्त्री से कौन विवाह करेगा, ये दंड दिया भगवान ने। और भगवान राम जानते थे कि इस क्षेत्र में बहुत से राक्षस रहते हैं। तीन प्रमुख हैं, खड़, दूषण और तुलसीदास। उनके साथ 14,000 राक्षसों की सेना थी। रावण का बहुत दृढ़ संबंध था इन तीनों से, तो भगवान ने इसीलिए सूर्पणखा को दंड दिया कि रावण को ये पता लगेगा तो अवश्य मेरे साथ युद्ध करेगा, और युद्ध होने पर मैं राक्षसों का विनाश करूंगा। विनाशाय तो दुष्कृता, इन दुष्कृतियों का नाश कर दूंगा। शूर्पणखा सबसे पहले गई खरदूषण और त्रिशिरा के पास। खरदूषण और त्रिशिरा एक राक्षस था जो तीन सिर वाला, उसको त्रिशिरा कहते हैं, तीन मस्तक वाला। तो खरदूषण और त्रिशिरा से उसने जाकर के शिकायत किया कि अयोध्या से जो लड़के आए हैं उनके साथ एक स्त्री है, मैं उस स्त्री को फुसला रहा था, तुम्हारे लिए, तुम्हारे बस में करने के लिए, तो इसी से रंज होकर के छोटे भाई ने हमारी नासिका को काट दिया। बहुत रो रही थी, बिलख रही थी, रोते रोते वह लंका में पहुंच गई और वहां जा करके रावण से शिकायत की। रो करके शूर्पणखा ने यह कह दिया कि तुम्हारे जीवित रहते भी मेरी ये दशा हो गई, मेरी नाक कट गई, धिकार है तुमको। तो रावण बहुत दुखी हुआ और सीता को चुराने का विचार किया। उसने सोचा कि खरदूषण और तीसरा तो मेरे समान बलवान हैं, उनको कौन मारा है। थोड़ा विचार किया, विचार करने पर उसे ऐसा लगा कि बिना भगवान के, बिना विष्णु के इनको कोई मार नहीं सकता। थोड़े काल के लिए विचार, अगर विष्णु होगा तो मैं उसके साथ झगड़ा करके मर जाऊंगा, अच्छा है, वो मार देगा मुझे। यदि भगवान के हाथ से मैं मर जाऊंगा तो मेरी मुक्ति हो जाएगी, लेकिन बीच में उसने सोचा यह परीक्षा करनी चाहिए कि ये भगवान है कि आदमी है। इसी के लिए रावण गया अपने मामा के यहाँ। उसका मामा भी एक प्रसिद्ध राक्षस था जिसका नाम मारीच था। वो भारतवर्ष में ही रहता था, समुद्र के पश्चिमी तट पर। तो रावण गया वहां मारीच के पास अकेले, कोई मंत्री आदि लेकर नहीं गया। तो मारीच पूछता है, कैसे अकेले आए राजन, कोई साथी नहीं था क्या? तो रावण कहता है, एक बहुत सीरियस घटना हो गई है। मेरी बहन गई थी इंडिया और वहां दो लड़के आए हैं अयोध्या से, तो कुछ बात में ही बिना अपराध के उन्होंने मेरी बहन का नासिका काट दिया, नाक काट दिया। इसके लिए मैं उन लड़कों को दंड देना चाहता हूं। उनकी पत्नी का हरण करना चाहता हूं, तुम मेरी सहायता करो। तुम मायावी हो, तुम हरिण बन करके माया से उनके आश्रम के समीप चरो, तुमको देख करके वो स्त्री मोहित हो जाएगी और उसी समय राम को प्रेरित करेगी कि इसको पकड़ करके लाइए, तुम भाग जाना, हो सकता है कि तुम्हारी मृत्यु भी हो जाए, राम तुमको मार दें, पर कुछ भी हो तुमको काम करना है मर कर भी। तो राम नाम सुनते ही उसने कहा, भांजा मैं तुमसे उचित राय देना चाहता हूं। तुम समझो वो राम नाम का व्यक्ति बहुत बलवान है। वो गया था एक बार विश्वामित्र मुनि के यज्ञ की रक्षा करने, तो मैं उस यज्ञ में गया था बाधा देने, तो उस राम ने बिना फर के बिना नोक के ही बाण मुझे मारा और मैं बाण की चोट से बेहोश हो गया और बाणों के वेग से मैं उड़ा दिया गया और आकर के यहां गिरा बहुत दूर से। तो राम के साथ बैर मत करो, राम कोई साधारण मनुष्य नहीं है, बहुत बड़े वीर हैं, तुम उनसे पार नहीं पाओगे। लेकिन रावण तुरंत कहा कि मैं राजा हूं, तुमको आज्ञा देने आया हूं, मैं तुमसे राय लेने नहीं आया हूं। और देखो राजा किसी का मामा या भगना नहीं होता है, तुम मरो या कुछ भी हो मेरा काम करोगे कि नहीं? तलवार खींच लिया मारीच को मारने के लिए। राजा का कोई मामा नहीं होता है, सभी उसके दास होते हैं। और मारीच को मारने के लिए तैयार हो गया राय देने के कारण, इसीलिए दुष्ट मनुष्य को कभी बिना अनुमति के राय नहीं देना चाहिए। तो मारीच ये देखा कि ये तो मुझे मार ही डालेगा, तो उसने विचार किया कि ठीक है राम के हाथ से मरना अच्छा है, मैं मृग बनूंगा, राम अवश्य मेरा वध कर देंगे, लेकिन राम के हाथ से मरना उत्तम है, इस दुष्ट के हाथ से मरना अच्छा नहीं। तो उसने स्वीकार कर लिया, मैं सीता को प्रलोभित करने जाऊंगा, तो गया मारीच। वो प्रसिद्ध घटना सब जानते ही हैं, बहुत सुंदर मृग बना, सोने का मृग, गोल्डन मृग। और भगवान राम के आश्रम के निकट चल रहा था, बहुत विचित्र मृग था, उसकी आंखें बहुत चमक रही थी, सारा शरीर सोने का था। उसको देख करके माता सीता के मन में लोभ हुआ है, भगवान की प्रेरणा से। भगवान चाहते थे कि इस पृथ्वी पर से असुरों का सफाया कर दिया जाए, इसके लिए उन्होंने सीता जी के मन में ये भ्रम पैदा किया। उस मृग को देख करके सीता जी ने कहा, हे पतिदेव, हे रघुनाथ, यह सोने का मृग है, हम लोग बहुत विपत्ति में हैं, इसके चर्म को, चाम को लाइए, इसको पकड़ करके लाइए, इसको मैं खिलाऊंगी। तो भगवान राम ने कहा, देवी तुमको मालूम नहीं है, इस जंगल में बहुत से राक्षस भी घुमा करते हैं, हो सकता है यह राक्षस हो और छल करने के लिए मृग बन करके आया, इसलिए लोभ मत करो। फिर सीता जी बहुत प्यारी थी भगवान की, उन्होंने कहा कि नहीं, यदि आप हमसे प्रेम करते हैं तो इस मृग को पकड़ करके लाइए, और यदि यह पकड़ में न आवे तो इसको मार करके इसका चाम लाइए। तो भगवान अपनी प्रिया की बात को टाल नहीं सकते थे, वे तुरंत चावल दिए उसको पकड़ने के लिए। राम को अपनी तरफ आते देख करके वह मारीच तुरंत बहुत तेज गति से भागा, तो राक्षस था, समझ गया कि राम मेरा वध करने के लिए आ रहे हैं। तो बहुत परेशान किया राम को, बहुत दूर तक घूमा जंगल में, भगवान राम उस हरिण के पीछे दौड़ते रहे, पर उचित दूरी से उन्होंने लक्ष्य करके उस पर बाण मार दिया और बाण खा करके गिर पड़ा। मरते समय उसने कपट किया, राम के स्वर में उसने पुकारा लक्ष्मण जी को, हे लक्ष्मण, हंसी पे हमें बचाओ, इनको ऐसा भ्रम हो गया सीता जी को कि हमारे पति ही विपत्ति में पड़े हैं और वे हमको पुकार रहे हैं, लक्ष्मण जी को पुकार रहे हैं। तब उस कपट ध्वनि को सुन करके सीता जी ने लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण, तुम्हारे भैया बहुत बड़ी विपत्ति में हैं, आवाज सुन रहे हो ना? तो लक्ष्मण जी भी सावधान करते हैं, नहीं माता जी, ये राक्षसों की, राक्षस की आवाज है, राक्षस इस तरह से बोल सकते हैं, राम जैसा उच्चारण कर सकते हैं। वह बार बार बोल रहा था, हे लक्ष्मण मुझे बचाओ। तब सीता जी के मन में ये भ्रम हो गया। उन्होंने साफ कहा कि सुनो, यह तुम्हारे भाई की आवाज है। लक्ष्मण जी मना करते रहे, नहीं ऐसा हो नहीं सकता है, राम को विपत्ति में डाल दे ऐसा कोई देवता भी नहीं है, कोई मनुष्य नहीं, कोई जीव नहीं है, आप चिंता मत कीजिए। इस पर सीता जी ने कुछ कड़े शब्दों में कह दिया, तुम क्या इसी के लिए वन में आए थे? तुम अपने भाई की रक्षा नहीं कर सकते। बहुत कड़ा जब जबान बोला सीता जी ने, तब लक्ष्मण जी भगवान की प्रेरणा से डल गए, डोलमल हो गए और चले राम की रक्षा करने के लिए। मारीच के कपट की आवाज से उन्होंने एक रक्षा रेखा खींचा, आश्रम के चारों तरफ, और कहा माता सीता से, आप इस रेखा से बाहर मत आइएगा, अंदर रहिएगा। और वे चले आए राम की रक्षा करने। मारीच राम के स्वर में पुकार रहा था। यह रामायण की प्रसिद्ध घटना है। भगवान चैतन्य महाप्रभु के विषय में भी यही कहा जाता है। ये राज्य को उन्होंने त्याग दिया, एक माया मृगम दैत्य शितमन अधावत, माया मृग के पीछे दौड़े। माया मृग के दो अर्थ हैं, माया से मृग बना हुआ या माया द्वारा जो नचाया जा रहा है। सारे जीव इस भौतिक जगत में माया के द्वारा नचाए जा रहे हैं। भगवान चैतन्य महाप्रभु इन मायाबद्ध जीवों के पीछे पीछे दौड़े, नवद्वीप का सुख छोड़ करके, नवद्वीप का सम्मान छोड़ करके और अपनी प्रियतमा पत्नी विष्णु प्रिया जी को छोड़ करके वे माया से मुग्ध मनुष्यों के पीछे पीछे दौड़े। मनुष्यों के ही नहीं, वन्य जीवों के प्रति भी। झारखंड में हाथी, व्याघ्र, हरिण, सर्प आदि सभी जीवों के पीछे पीछे दौड़े। हरिनाम बोलते हुए और बुलवाते हुए, हरि बोल कहो, और जंगल के जीवों को नचा दिए कीर्तन करके। तो माया मृग का यह अर्थ है, माया से जो देह को, गेह को अपना मान बैठे हैं, उनको हरिनाम देते हुए, प्रेम देते हुए भगवान चैतन्य महाप्रभु दौड़े सबके पीछे। दोनों बाह उठा करके बोलते थे हरि बोल, हरे कृष्ण कीर्तन करते थे, और इसी हरि नाम से उनका उद्धार करते थे। मैं भूल गया, कल प्रतिज्ञा किया था कि मैं सीता जी के उद्गार को कहूंगा, तो वहीं से प्रारंभ करता हूं। जब भगवान राम अपनी मां के पास गए तो उसी समय सीता जी भी गई अपनी सास के पास, कौशल्या के पास। कौशल्या जी समझा रही थी सीता को कि बेटी वन में बहुत कष्ट है, तुम जाने का मत सोचो। और उन्होंने कह दिया भगवान राम से, अपने पुत्र से, कि देखो ये सीता वन में जाना चाहती है, जो तुमको उचित लगे तो इसको शिक्षा दो। माता की आज्ञा पा करके भगवान राम सीता जी को समझाए, ये कथा कल हो चुकी थी। आज की कथा में मैं ये कहना चाहता था कि सीता जी क्या निवेदन करते हैं। सीता जी ने कहा, मोहि प्राण प्रिय, मोहि प्राणपति सुख दीनी। माता जी से बात करते हैं कि माता जी मेरे प्राणपति, मुझे जो शिक्षा दिए ये सोच करके कि उसका पालन करके मेरा परम हित होगा। कितनी मर्यादा की बात है, भगवान अपनी पत्नी से डायरेक्ट बात नहीं करके अपनी माता से कहे थे कि सीता को ऐसे रहना चाहिए। तो सीता जी भी डायरेक्ट पति देव से बात न करके पहले माता से कहती हैं कि मेरे प्राणपति, मेरे प्राणेश्वर, मुझे वही शिक्षा दिए जिससे मेरा परम हित हो। दिन है प्राणपति मोहि सिख सोई, जे विधि मोर परम हित होई। मेरा परम हित जिसमें हो वही शिक्षा इन्होंने दिया। माता कौशल्या से कह रहे हैं सीता जी, इतना बात कह करके फिर अपने पति से कहती है माँ के सामने, मैं पुनि समुझ दिख मन माही, पिए बिजोग सम दुख जग नाही। माता जी मैंने भी विचार किया अपने प्राणपति की बात सुन करके, अपने मन में बहुत सोची, इस संसार में बहुत दुख है लेकिन सबसे बड़ा दुख पति वियोग है, पति वियोग सम दुख जग नहीं। हमारे पतिदेव ने बहुत से दुखों का वर्णन किया, वन में अनेक कष्ट हैं। जैसे उन्होंने वर्णन किया था, ब्याल कराल बिहग बन घोरा, निश्चर निकर नारी नर चोरा। वन में बहुत से सर्प रहते हैं, सर्पों में भी बड़े बड़े सर्प अजगर, और कहीं रास्ते में वे रुक जाते हैं, रास्ता छींक लेते हैं, आगे नहीं बढ़ने देते हैं। बड़े कराल सर्प होते हैं अजगर, रास्ते को छींक लेता है और खड़ा हो जाता है,
اس پر آدمی چل نہیں سکتا ہے اس راستے پر، راستہ کو چھینک کر کے کھڑا ہو جاتا ہے اور نگل جاتا ہے منوشیہ کو. اسی لیے بھگوان نے کہا تھا بیال کرال، سانپ بہت کرال ہوتے ہیں، بہت بھیانک، راستہ گھیر کر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور بیہنگ بن گھورا، بن میں بہت سے پکشی رہتے ہیں جو آدمی کو لے کر کے اڑ جاتے ہیں. ایسا پرسدھ پکشی کچھ ہوتے ہیں جیسے شاردول، تو بڑے بڑے ہاتھیوں کو لے کر اڑ جاتے ہیں. منشیوں کی تو بات ہی کیا ہے، تو بن میں بہت کشٹ ہے اور بہت سے سرپ باغ ہیں، سنگھ ہیں، بھیڑیے ہیں، جنگلی ہاتھی ایسے آواز کرتے ہیں کہ ان کی آواز سنتے ہی ہارٹ اٹیک کر سکتا ہے. دھیرج نہیں رہ جاتا ہے آواز سنتے ہی، اس لیے بن میں نہیں چلنے کا آگرہ کرنا چاہیے. بھگوان کی ان باتوں کا اتر دیتے ہیں سیتا جی. یپی پرانیشور بھگوان نے بنواس کے دکھوں کا ورنن کیا، لیکن ماتا جی میرے وچار سے اس سنسار میں سب سے بڑا دکھ ہے پتی کا ویجوگ. اس سنسار میں ماتا رہے، پتا رہے، بھائی رہے، بہن رہے، ساس سسر سب رہے، جتنے بھی ناطے دار ہیں اس سنسار میں سب رہے، ساس سسر گرو، یہاں تک کہ سوشیل پتر بھی رہے، آگیاکاری پتر، بھائی پریمی، لیکن جب استری کے پتی نہیں ہوتا ہے، پتی سے اس کا ویجوگ ہوتا ہے، تو کوئی بھی سکھ نہیں دے پاتا، سبھی سورج کی طرح جلانے والے ہوتے ہیں. جب پتی رہتا ہے تب تو سب سکھ دیتے ہیں، لیکن پتی نہیں رہے تو سب دکھ دیتے ہیں. ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ یدی پتی سے ڈیورس ہو جائے، ترکت ہو جائے کنیا، تو خاص بھائی، خاص پتا چاہتے ہیں کہ ابھی مر جائے تو اچھا ہے. تو اس سنسار میں استری کے لیے سب سے بڑا سمبندھی اپنا پتی ہی ہوتا ہے، پتی کے بنا سب دکھد ہو جاتے ہیں. تن دھن دھان دھرنی پور راج، پتی بھین سب شوک سماج. سب رہے، کھیت ہو، گھر ہو، اپنا راج ہو، لیکن پتی بھین سب شوک سماج، پتی نہیں رہے تو یہ سب دھن اور دھرتی پور راج سب شوک کے سماج ہو جاتے ہیں، سب سکھ دینے والے ہوتے ہیں. بھوگ روگ سم بھوشن بھارو، جمجا تنا سرس پریوارو. پتی سے بجکت استری کے لیے بھوگ روگ کے سمان ہوتا ہے، भूषण भार और आभूषण उसके लिए भार हो जाता है। ये देखा हुआ सत्य है। यदि कोई विधवा स्त्री गहना पहने तो गहना उसके लिए भार ही है। वही गहना जब पति थे पति के सामने पहनती थी वो अच्छा लगता है, समाज भी अच्छा मानता है, लेकिन पति से विहीन हो जाने पर न कपड़ा अच्छा लगता है और न गहना न भोजन, भोग रोग सम पति से विहीन होने पर ये भोग रोग हो जाता है। और जनजातना से इस परिवार और अपना परिवार भी जमराज के दूतों जैसा दुखद हो जाता है। फिर अपने पतिदेव से कहते हैं, प्राण नाथ तुम बिनु जगमाही, मोह कह सुखद कतहु कछु नाही। हे प्राणनाथ, आपके बिना मुझको इस भौतिक जगत में कहीं भी कुछ भी सुखद नहीं है। किसी भी स्त्री के लिए कहती है, जिय बिनु देह नदी बिनु बारी, तैसी नाथ पुरुष बिनु नारी। जैसे बिना जीवात्मा के ये शरीर हो जाता है और बिना पानी के नदी की शोभा नहीं रहती है, उसी तरह से बिना पुरुष के स्त्री की शोभा नहीं है। जिय बिनु देह नदी बिनु बारी, दो उदाहरण दे रही। जीव के बिना देह और बिना पानी के नदी। इस देह की तभी तक शोभा है जब इसमें जी रहे, जीव रहे। जिय बिनु देह, जब इस देह को जीवात्मा छोड़ करके चला जाता है तब यह देह मृतक कहा जाता है। कोई देखना भी नहीं चाहता देह, इसको तुरंत ले जाकर के श्मशान में जला दिया जाता है या दफना दिया जाता है। तो जैसे बिना जीवात्मा के देह की दशा होती है, जैसे बिना पुरुष के स्त्री की दशा है। जिय बिनु देह नदी बिनु वारी, और किसी नदी में जब तक जल है तब तक बहुत चहल पहल है, शोभा है, बड़े बड़े नगर भी बसते हैं। जैसे नदी के तट पर बनारस जैसे शहर बसे हुए हैं तो नगर की शोभा है। नदी में पानी रहे तो नदी की शोभा है, अगर पानी न रहे तब नदी भयानक लगती है। जिय बिनु देह नदी बिनु बारी, सामान्य स्त्रियों के लिए सीता जी ने कहा कि नदी में पानी न रहे तो उसकी शोभा नहीं होए। और अपने लिए कह रहे हैं कि जिय बिनु देह, जैसे जीवात्मा के बिना देह है। हे प्राणनाथ, आप मेरे प्राण हैं, प्राणों के रक्षक हैं। आप यदि नहीं रहेंगे तो मेरे प्राण बच नहीं पाएंगे। प्राणनाथ कह करके ये संबोधित कर रहे हैं। आप कह रहे हैं सास की सेवा करने के लिए, ससुर की सेवा करने के लिए, लेकिन प्राण रहेगा तभी न सेवा कर पाऊंगी, प्राण नहीं रहेगा तो सेवा कैसे कर पाऊंगी। कोई अपेक्षा नहीं रहती है कि मरे हुए व्यक्ति से कोई सेवा ली जाए। मैं आपके बिना मृतक शरीर जैसा हूं, मैं किसी की सेवा नहीं कर पाऊंगी आपके बिना। आप जब रहेंगे अयोध्या में तब मैं सबकी सेवा करूंगी। आपके चले जाने के बाद मैं जीवित ही नहीं रहूंगी, सेवा क्या करूंगी। आपने वनवास के दुख का बहुत वर्णन किया। बहुत परिताप शोक का वर्णन किया, लेकिन सबसे बड़ा दुख है कि आप वन में रहें और मैं घर पर रहूं। राखिए अवध जो अवधि लगी, रहत न जनी है प्राण। यदि आप मुझे रखना चाहते हैं अयोध्या में और 14 साल के लिए, तो आप समझ लीजिए कि ये प्राण नहीं रहेंगे। प्राणनाथ सुंदर सुखदर, आप ही हमारे जीवन हैं, प्राणों के प्राण हैं, सुंदर हैं और सुशील हैं। केवल इतना ही नहीं, आप अंतर्जामी हैं, आप सबके हृदय में रहते हैं, आप हमारी स्थिति को समझ रहे हैं। विनती बहुत करों का स्वामी, करुणा मैं उर अंतर्जामी। आप अंतर्जामी हैं और करुणा मैं हैं, कृपा मैं हैं। आपसे मैं अधिक क्या कहूं, मैं आपके बिना जी नहीं सकती हूँ। असजिए जानी सुजान शिरोमणि, संग लीजिए मुहि छाड़िए जनी, मुझको संग ले लीजिए, छोड़िए मत। इस बात को समझ लीजिए कि मेरा जीवन नहीं रह पाएगा आपके बिना। मैं आप पर भार नहीं बनूंगी, मैं सेवा करना चाहती हूँ, सेवा ही मेरा जीवन है। मैं सेवा के लिए आपके साथ वन में जाना चाहती हूँ। सभी भात पिए सेवा करी हूँ, मैं सब प्रकार से सेवा करूंगी आपकी। महिमा चलत न हुई है हारी, जंगल जाते समय रास्ते में मुझे कोई थकावट नहीं होगी। کیوں نہیں تھکاوٹ ہوگی کہ چھن چھن چرن سروج نہاری، میں چھن چھن میں آپ کے چرن کمل کو دیکھتی رہوں گی تو مجھے تھکاوٹ نہیں ہوگی. میں سیوا کروں گی، پائیں پکھاری بیٹھ تر چھائی پر کریوں باؤ مدت منمائی. بلکہ آپ جب راستہ چلتے چلتے تھک جائیں گے تو میں کسی سگن پیڑ کی چھایا میں آپ کو بیٹھاؤں گی، بیٹھا کر کے آپ کے چرن کو پکھاروں گی، آپ کا چرن دھوؤں گی، چرنوں کو ہی مارگ کا شرم ہوتا ہے نا. مارگ چلنے پر پیر تھک جاتے ہیں تو آپ کو تھکت جان کر کے میں ترنت آپ کا چرن دھوؤں گی. چرن دھو کر کے شیتل چھایا میں بیٹھاؤں گی آپ کو، اور آپ کے اوپر کسلے سندر سندر پتا سے پنکھا بنا کر کے ہوا کروں گی، آپ کو سکھ پہنچاؤں گی. کریہوں باؤ مدت منمائی، میں اپنے من میں پرم خوشی کے ساتھ آنند کے ساتھ آپ پر پنکھا جھڑوں گی، مجھے کوئی کشٹ نہیں ہوگا. واسطو میں یہ کشٹ نہیں ہے. جب کوئی ویکتی پرسن ہوتا ہے تو اسے پریشرم بھار نہیں ہوتا ہے. میں آپ کے چرن کمل کو دیکھتی رہوں گی اور آپ کی سیوا کرتی رہوں گی تو مجھے کوئی کشٹ نہیں ہوگا راستے میں اور بن میں، میں سکھی رہوں گی. میں چاہتی ہوں سیوا کا ادھیکار ہمیں رہے ملے، کہیں بھی رہوں گی آپ کی سیوا کروں گی، لیکن آپ کے ساتھ رہوں گی. سیوا ہی ہمارا جیون ہے، میں سیوا کے بنا نہیں رہ پاؤں گی. سب ہی بھانت پی سیوا کری ہوں، میں سب پرکار سے سیوا کروں گی. یہی ہمارا کرتویہ ہے. سب طرح کی سیوا کروں گی، بن کے راستے میں، بن میں پہنچنے پر، دن میں، رات میں، سب سمے سیوا کروں گی. سم مہتر تر پلو داسی پائے پلوٹی ہی سب نسی داس. سمتل بھومی پر میں گھاس بچھاؤں گی، گھاس کی سجا لگاؤں گی، اور کومل کومل پتا سے آپ کا بیڈ بناؤں گی اور آپ کو سلاؤں گی اس پر. تب میں پوری رات رات بھر چرن دباؤں گی. پائے پلوٹی سب نسی داس، سمپورن راتری میں آپ کے چرن کو دباؤں گی. میں ایودھیا میں بہت دکھی رہوں گی اور آپ کے پاس آپ کی جب سیوا کرتی رہوں گی تو مجھے بہت سکھ ہوگا. Thank you. प्राण नाथ तुम बिन जग माही मोका सुखद कतहुं कछुनाही। हे प्राणनाथ, आपके बिना इस संसार में मुझे कहीं भी और किसी भी वस्तु से कोई सुख नहीं। मोका सुखद कतहुं को नाही कछुनाही। यहाँ तक कह दिया सीता जी ने, तुम बिन रघुकुल कुमुद विधु सुरपुर नरक समान। हे सूर्य कुल चंद्रमा, सूर्य कुल को विकसित करने वाले सूर्य कुल यदि कुमुद है, कुमुदनी है, तो उसको विकसित करने वाले आप चंद्रमा है, रामचंद्र है। कि आपके बिना देवता का नगर भी, इंद्रपुरी भी मेरे लिए नरक के समान है, सुरपुर नरक समान। आपके बिना मेरे लिए देवराज इंद्र का नगर भी नरक के समान है। तुम बिन रघुकुल कुमुद विधु सुरपुर नरक समान। नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे, हमारा जो भी सुख है सारा सुख आपके साथ रहने में है। नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे, शरद विमल विधु बदन निहारे। आपके मुखार बिंद को मैं देखती रहूंगी, जो शरद काल के चंद्रमा के समान सुंदर है, तो मेरा सबसे बड़ा सुख यही है, आपके चरणों की सेवा और आपके मुख कमल को निहारते रहना, देखते रहना। नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे, जब आपके साथ मैं रहूंगी तो सारा सुख मुझे रहेगा, सकल सुख। शरद विमल विधु बदन निहारे, शरद कालीन चंद्रमा के समान सुंदर आपका मुख देखती रहूंगी, मेरा यही सुख है। मुझे इस सुख से वंचित मत कीजिए। स्पष्ट शब्दों में श्री जानकी जी ने कह दिया कि मुझे छोड़िए मत, मुझे अपने संग ले चलिए। अब मैं जाना चाहती हूँ, क्यों? क्योंकि मैं सेवा करना चाहती हूँ, सेवा मेरा जीवन है। आपकी सेवा नहीं कर पाऊंगी, मैं मर जाऊंगी। कितना सुंदर वचन है, प्रत्येक पत्नी को यही भाव रखना चाहिए। हमें भगवान ने स्त्री बनाया है और किसी की पत्नी बनाया है, तो अपने पति की सेवा करनी है और पति के संबंध से सास की सेवा करनी है, ससुर की सेवा करनी है यथोचित। पर सेवा ही हमारा जीवन है। पति के बिना स्वर्ग हमारे लिए नरक है। इस संसार में प्रायः आधी संख्या स्त्रियों की है, आधी भी पुरुषों की है। तो भगवान ने स्त्री पुरुष के संबंध को इस तरह से बनाया है, एक सबॉर्डिनेट है, एक प्रोमिनेंट है। तो निश्चित ही पुरुष की अपेक्षा स्त्री सबॉर्डिनेट है, अधीन है। स्त्री को चाहिए कि हमेशा पति के अधीन रहे, पति की सेवा करे, और पति का कर्तव्य है कि सदा पत्नी को सुखी रखने का प्रयत्न करे। परस्पर सहयोग से संसार सुखी हो सकता है। केवल अधिकार देखने से काम नहीं होगा, कि प्रत्येक व्यक्ति ये सोचे कि हमारा ये अधिकार है, अपना अधिकार देखे, लेकिन सबसे ज्यादा दृष्टि इस पर रहनी चाहिए कि हमारा कर्तव्य क्या है। तो प्रत्येक पत्नी का कर्तव्य है पति की सेवा करना। और ऐसा ही जीवन होना चाहिए कि जैसे सीता जी, ने कभी अयोध्या के महल के सुख को देखा नहीं, कभी विचार नहीं किया। जंगल में रहने के लिए तत्पर है, वन में रहना चाहती है पति के साथ। बल्कि पति आग्रह करते हैं कि तुम अयोध्या रह जाओ, वन में कष्ट होगा, परंतु पत्नी वन के कष्ट को कष्ट समझती ही नहीं है। वो तो देख रही है कि वन में मैं बहुत प्रसन्न रहूंगी, अपने पति की सेवा करूंगी, पति के लिए सज्जा बनाऊंगी, रात भर चरण दबाऊंगी। वन में चलते समय सघन वृक्ष की छाया में बैठा करके पति को चरण धोऊंगी, चरणों की थकावट दूर करूंगी। इस प्रकार के विचार बड़े उन्नत विचार है, इसी से संसार सुखी किया जा सकता है। यदि इसी तरह का विचार सभी स्त्रियों में रहे तो यह पृथ्वी स्वर्ग बन सकती है। अंतिम बात सीता जी ने कह दिया, जब भगवान समझा रहे थे वन में नहीं चलने के लिए, तब सीता जी ने इस बात को सुन करके विकल हो गई, रोने लगी। वचन वियोग न सकी संहारी, केवल भगवान ने इतना कह दिया कि तुम अयोध्या में रहो, मुझे वन जाने दो, मैं पुरुष हूं, तपस्या कर सकता हूं, तुम बहुत सुकुमारी हो। तो सीता जी सोचते हैं, मैं सुकुमारी नाथ बन जोगू, तुम ही उचित तप मोह कहां भोगू। भगवान का ये वचन बहुत कठोर था, मैं तपस्या कर सकता हूं, तुम सुकुमारी हो। तो सीता जी ने प्रकारांतर से समझ लिया कि भगवान हमको कह रहे हैं تم اجودھیا کا سکھ بھوگو, بھوگ بھوگو, مجھے تپ کرنے دو. تو سیتا جی سوچتے ہیں میں سکماری ہوں اور یہ تپسیا کے یوگ ہیں, تو اتنا کٹھور وچن سن کر کے بھی میرا کلیجہ نہیں پھٹا. میرا ہردے پھٹ جانا چاہیے لیکن نہیں پھٹا. تو میں یہ سمجھتی ہوں, انمان کرتی ہوں کہ بھگوان کا بسم بجوگ بھی میں سہ لوں گی. میرے پران کٹھور ہیں, اتنا کٹھور وچن سن کر کے بھی میں مری نہیں, میرا کلیجہ نہیں پھٹا, تو بیرہ بھی سہ لوں گی. اس پر سیتا جی بیاکل ہو گئی, رونے لگی. یہ سن کر کے کہ تم ہی اپسی تو تپ منہ کا بھوگ پتے تپسیا کریں بن میں اور میں بھوگ بھوگوں, اس بچن کو سہ نہیں سکی. بہت بلک کر کے رونے لگی. تو بھگوان نے اس دشا کو دیکھا, سیتا جی کی دیکھی دشا رگھوپتی جی جانا ہٹھی رکھے نہیں رکھے پرانا. بھگوان نے دیکھا کہ سیتا کو یدی میں زبردستی اجودھیا چھوڑ دیتا ہوں تو یہ جی نہیں پائے گی, یہ پران رکھ نہیں پائے گی. تو کہو کرپالو بھان کل نہ تھا, تو سورج کل کے سوامی بھگوان ترنت بول دیے کیونکہ کرپالو ہیں. پریہر سوچ چل ہوں بن سا تھا, ٹھیک ہے تم چنتا مت کرو, سوچ پریہری شوک کا تیاگ کر کے میرے ساتھ چلو بن میں. جب یہ کہا تب سیتا جی کو کچھ سنتوش ہوا ہے, میں کھڑی ہو سکی نہیں تو گر گئی تھی. تو اسی لیے ترنت بھگوان نے کہا کہ پریہر سوچ چل ہوں بن ساتھ ہے, نہیں وساد کر اوسر آج بیگ کر ہوں بن گمن سماج. یہ وساد کا سمے نہیں ہے, شیگر بن میں چلنے کی تیاری کرو. جو سامان لینا ہے وہ آوشیک سامان لے لو اور چلو, جلدی چلو. بھگوان نے بیگی شبد کا پریوگ کیا, بہت جلدی چلو. بھگوان کو یہ شنکا تھی کہ کہیں دیر ہوگی تو کئی لوگ پھر سمجھانے والے مل جائیں گے, رکنے والے مل جائیں گے. اور بن جانے میں یدی دیر ہوگی تو پتا کی آگیا پالن میں اسردھا ویکت ہوگی, ایسا سمجھا جائے گا کہ رام بن میں نہیں جانا چاہتے تھے اسی لیے دیر کیے. بھگوان نے اسی کارن سے سیتا جی کو کہا کہ جتنا جلدی نکلو بن کے لیے, بیگ کرو بن گمن سماج, بن میں چلنے کی تیاری کرو. بھگوان نے دیکھا کہ یدی ایسا نہیں کہتا ہوں تو سیتا ابھی مر جائے گی, اس کے پران چلے جائیں گے. اسی لیے انہوں نے کہا کہ پریہر سوچ چلو بن ساتھ, سوکھ چھوڑ کر کے میرے ساتھ بن میں چلو اور جلدی چلو, کیونکہ ماتا کیکیی نے یہ بر مانگا تھا دشرتھ جی سے کہ ہو تو پراپت منی ویش دھری جون رام بن جائیں, مور مرن راور اجسا دیر کو سمجھیے من مائیں. یدی پراتہ سورجودے ہوتے ہی राम वन में नहीं गए तो मैं निश्चित मरूंगी, आत्महत्या करूंगी और राजा को अजस प्राप्त होगा। सत्य पालन नहीं कर पाए, अपने वचन की रक्षा नहीं किए, तो सूर्योदय होते ही राम को अयोध्या छोड़ देना है, वन में चले जाना है। इसलिए भगवान ने सीता जी को कहा कि जल्दी करो, देरी करो, वन गमन समाज हूं। भगवान की ये बात सुन करके सीता जी प्रसन्न हो गई, शोक से गिरी हुई थी वे हर्ष से उठ गई और तुरंत माता कौशल्या के चरणों पर गिर करके आज्ञा मांगने लगी कि माँ माँ मुझे आज्ञा दो, क्या किया जाए, मैं मुझको सेवा तो नहीं मिली, सेवा समय दैव बन दीन है, मोर मनोरथ सफल किन है। ये ऐसी विधाता की गति है, क्या कहा जाए। जब मुझे सेवा का अवसर आया, मैं विवाह करके अपने पिता के यहाँ से आई, मैं सेवा करना चाहती थी लेकिन सेवा के समय ही दैव ने बन दे दिया, आपकी सेवा नहीं कर पाई। माता कौशल्या आशीर्वाद देने लगी, आयुष देने लगी, आज्ञा देने लगी कि बेटी जहां भी रहो अपने धर्म का पालन करो। बहुत तरह के आशीर्वाद दी। आशीर्वाद में सबसे बड़ा आशीर्वाद है अचल हो अहिवात तुम्हारा, जब लगी गंग जमुन जल धारा। जब तक इस पृथ्वी पर गंगा और जमुना की धारा रहे तब तक तुम्हारा सौभाग्य रहे, तुम पति के साथ रहो, तुम्हारा अहिवात अचल हो। तुम अपने पति के साथ अमर रहो। अचल हो अहिवात तुम्हारा, जब लगे गंग जमुन जलधारा। जब तक गंगा जमुना की धारा है तब तक तुम सौभाग्यवती रहो, पति की सेवा में रहो। इतना कह करके फिर आज्ञा देने लगी और माता कौशल्या रोने लगी, विलाप करने लगी। भगवान राम भी अपनी माँ के चरण में गिर गए। उस समय माता कौशल्या की क्या दशा हुई होगी इसको कहा नहीं जा सकता। माता कौशल्या यही कहती है कि वह दिन कब आएगा, वह घड़ी कब आएगी जब दोनों जुगल जोड़ी को मैं अपनी आंखों से देखूंगी। फिर कहने लगी कब समय आएगा कि जब मैं पुनः अपने पुत्र को वत्स कह करके, लाल कह करके, रघुवर कह करके رگھناتھ کہہ کر کے اپنے ہردے سے لگاؤں گی. یہاں کہہ کر کے مورچھت ہو کر کے ماتا کوسلیا گر گئی اور شری رام اسی سمے بن چلنے کے لیے نکل گئے گھر سے, ماتا کے بھون سے سیتا جی کے ساتھ. کتنا یہ کروڑ دل سے ہوگا اس کو سوچنے میں بھی کشٹ ہوتا ہے, لیکن دھرم پالن میں کشٹ ہوتا ہی ہے. بھگوان دھرم پالن کے لیے نکل گیا. واستوک دھرم پالن ہے اور دھرم پالن کے لیے اصلوں کا بدھ ضروری ہے. جس سمے بھگوان گھر سے نکلے سیتا کے ساتھ, اس سمے لکشمن جی کو ایک خبر ملا کہ بھگوان بن میں جا رہے ہیں, تو یہ بھی دوڑے رام سے ملنے کے لیے, بن جانے کے لیے. یہ پرسنگ کل کہا جائے گا. جائے شری پربھوپاد.